ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नाश्रवये सर्वदेशो नित्यं भगवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। तो आज हम श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 28 श्लोक संख्या 1 तो साथ ही साथ मंत्र श्लोक का उच्चारण करेंगे। नारद उवाच सैनिका वयनं नो ये बर्हिष्मान् दृष्टकारिणा प्रज्वारकलकन्याभ्यां वीचेरुरवनिमिमं नरद उवाच सैनिका वयनं नो ये बर्हिष्मन् दृष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभ्यां वीचेरुरवनिमिमम् नारद उवाच सैनिका वयनं नो ये बर्हिष्मान् दृष्टकारिणः प्रज्वारकलकन्याभ्यां वीचेरुरवनिमिमम् नारद उवाच वयनं नो ये बर्हिष्मान्दिष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभ्यां वीचेरुरवनिमिमां नारद उवाच सैनिका वयनं नो ये बर्हिष्मान्दिष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभ्यां वीचेरुरवनिमिमम् बर्हिष्मान्दिष्टकारिणः सैनिका वयनं नो ये बर्हिष्मान्दिष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभ्यां वीचेरुरवनिमिमं मतजि नारद उवाच सैनिका वयनं नो ये बर्हिष्मान्दिष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभ्यां वीचेरुरवनिमिमं नारद उवाच नारद वाचन। नारद मुनि ने कहा सैनिका सैनिक भय नाम नाम भाई के ये जो बरहिष्मन हे राजा प्रजिन बारहिषत दिष्टकारिना काल की आज्ञा के पालक प्रज्वरम प्रज्वर काल कन्याभ्यम तथा काल कन्या सहित विचेरों घूमने लगे अवनिम पृथ्वी पर इमाम इस अनुवाद और तत्पर्य शिल ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद के अनुवाद। नारद मुनि ने आगे कहा हे राजा प्रजिन बारहिषत तत्पश्चात यवन राज सक्षत भाई प्रज्वार कालकन्या तथा अपने सैनिकों सहित सरे संसार में विराजने लगा। तत्पर्य मृत्यु के पूर्व की जीवन अवस्था अत्यंत भयावह होती है क्योंकि प्रायः इसी में निर्बलता तथा अनेक रोगों का शिकार बनना पड़ता है। शरीर पर आक्रमण करने वाले रोगों की तुलना यहाँ पर सैनिकों से की गई है। ये सैनिक भी कोई साधारण सैनिक नहीं, इनका संचालन यवन राज करता है। दिष्ट करना शब्द सूचित करता है कि वो उनका संचालक है। जब मनुष्य जवान होता है तो वो बुराइयां बुरापे की परवाह नहीं करता और मान भार कर स्त्री संभोग करता है जिससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। तब तो वो मृत्यु को बुलाने लगता है। जो मनुष्य युवा अवस्था में जितना ही स्त्री संभोग करता है वो बुढ़ापे में उतना ही कष्ट पाता है। अगले श्लोक और तात्पर्य भी पढ़ता हूँ। ता एकदा तु राभासा पुरंजन पुरंजन पुरीम नृपा रुरुधोर भौमा भोगाद्याम जरत पाना घा पालिनाम। एक बार अनुवाद एक बार इन भयानक सैनिकों ने पुरंजना नागरी पर बड़े वेग से आक्रमण किया। यद्यपि यह नागरी भोग की सारी सामग्री से परिपूर्ण थी किंतु इसकी रखवाली एक बुरा सर्प कर रहा था। तत्पर्य इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहने से शरीर दिन प्रतिदिन जर्जर होता जाता है। अंत में शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि इसकी तुलना बुरे सर्प से की जाती है। पहले ही प्राण की तुलना सर्प से की जा चुकी है। जब शरीर के भीतर का प्राण क्षीण होने लगता है तो शरीर भी क्षीण हो जाता है। इस समय मृत्यु के लक्षण चारों ओर मंडराने लगता है। अर्थात यमराज के भयानक दूत दिखने लगता है और घोर आक्रमण करने लगता है। वैदिक प्रथा के अनुसार ऐसी अवस्था प्राप्त होने के पूर्व ही मनुष्य को घर छोड़कर ईश्वर के संदेश का उपदेश करने के लिए आजीवन संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। किंतु यदि मनुष्य घर पर रहता है और उसकी प्रिया पत्नी तथा पुत्र उनकी सेवा करता है तो इंद्रिय तृप्त के कारण वो निश्चय ही क्षीण होता चला जाता है। और जब अंत में मृत्यु आती है तो ऐसे मनुष्य अपने पीछे आध्यात्मिक संपत्ति विहीन शरीर हो जाता है। वर्तमान समय में तो बुरा से बुरा व्यक्ति भी अपने परिवार को नहीं छोड़ता, वह अपनी पत्नी बच्चों धन ऐश्वर्य घर इत्यादि से बंधा रहता है। इस प्रकार जीवन के अंतकाल में मनुष्य को चिंता रहती है कि उसकी पत्नी की रक्षा कैसे होगी और वो परिवार को कैसे संभालेगी। इस प्रकार सामान्यतः मृत्यु के पूर्व लोग अपनी पत्नी के विषय में सोचता है। भगवद गीता के अनुसार यम यम वपि स्मरम भावम त्यजंतं ते कलेवरम तं तमेवाल्ति कौन्तेया सदभाव भाविता। मरते समय मनुष्य जिस किसी स्थिति के विषय में स्मरण करता है उस स्थिति को वो निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जीवन के अंतकाल में मनुष्य सोचता है कि सारे जीवन में उसने क्या क्या किया है और इस तरह जीवन के अंत में उसके जो भी विचार तथा इच्छा होती है उसी के अनुसार उससे दूसरा शरीर देहांतर प्राप्त होता है। जो जीवन भर घर में ही लिप्त रहता है उसके लिए स्वाभाविक है कि अंतकाल में अपनी प्राण प्रिया पत्नी के विषय में सोचे, अतः अगले जीवन में उसे स्त्री का शरीर प्राप्त होता है और साथ में उसे पुण्य या पाप कर्म तथा कफाल भी मिलता है। इस अध्याय में राजा पुरंजन द्वारा स्त्री देह प्राप्ति के विषय में विस्तार से बताया गया है। ओम अज्ञानात् तिमिरन्तस्या ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामायं ददाति सापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनतन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशगन्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिककान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिये। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च परीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर शिव सदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। तो नारद मुनि वहाँ पर राजा प्रचीन बारिशर को उपदेश देता है और वास्तव में सब ये उपदेश सब जीवात्मा के लिए जो बाधावस्था में है, जो इस भौतिक जगत में मनुष्य शरीर के रूप में है, और तो सबसे पहले जो भी भक्ति मार्ग में नए हैं उनके लिए तो जरूर उपदेश है, लेकिन भक्त के लिए भी जो साधन भजन करता है उपदेश देता है, क्योंकि हाँ सदक भी भजन करते करते, विशेष करके जब गृहस्था में समय है, लेकिन दूसरे भी ब्रह्मचारी कभी कभी ये जो देहात्म बुद्धि नहीं छोड़ सकता है, और वास्तव में ये अत्यंत मुश्किल है, कठिन है। तो हमारे पास तो ज्ञान है भगवान की कृपा से, श्री चैतन्य महाप्रभु की आयतु की कृपा से, जो कलयुग के अवतार है, और उनके परंपरा में हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के गुरुजान के, विशेष करके शिलेशी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की कृपा से हम तो समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं है, अभी तो आत्मा है, कि हमारे वास्तविक संबंध कृष्ण के साथ है, वास्तविक परिकार जो हमारे हैं, ये परिवार जो है ये कृष्ण के है, अच्युत गोत्र इसलिए कहा जाता है। हमने दूसरे जो जैसे जगत में, विशेष करके भारत वर्ष में, तो अलग अलग मुनि के जो और गोत्र है इसमें आ जाता है, सब जो वैदिक संस्कृति का पालन करता है, जैसे ये वशिष्ठ मुनि के गोत्र है, भरत मुनि के गोत्र है, कश्यप मुनि के गोत्र है, ठीक है, और इसके उनके आदेश के अनुसार भी हम चल सकता है, ये सब महामुनि है, भक्त है, लेकिन यह है कि इसके अलावा भी हमको समझना चाहिए कि वास्तविक संबंध तो हमारे कृष्ण के साथ है। इसलिए जब दीक्षा लेता है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, ये सब दूसरे विचार जो है वैदिक संस्कृति के भी छोड़ता है, और हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के विचार के अनुसार हम चलते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हम अभी अच्युत गोत्र में है, कृष्ण के परिवार में पहुंच गया है, और सब कुछ कृष्ण को अर्पण करता है, तन मन वाचा सब कृष्ण की सेवा में, संपत्ति धन संपत्ति सब कृष्ण की सेवा में लगाता है। तो ज्ञान है, संबंध ज्ञान है, कृष्ण भगवान है, और हम उनके नित्य दास है, जिवेर सो पाय कृष्णेर नित्य दास। तो सुन लिया है लेकिन इसके बाद अनुभव भी करना है वास्तव में, कि हम ये भौतिक शरीर से अलग है, सूक्ष्म शरीर से भी अलग है। तो सूक्ष्म शरीर से अलग रहना ये थोड़ा सा मुश्किल है, समझ सकता है शरीर नए है, और देखते अपना शरीर और हम इससे परे हैं, इस शरीर के अंदर है, लेकिन सूक्ष्म शरीर ये पार करना थोड़ा सा मुश्किल है। भौतिक मन है, भौतिक बुद्धि है, और इसके बाद अहंकार है, ये पार करना तो अत्यंत कठिन है। लेकिन भजन भजन करते करते तो आध्यात्मिक अवस्था पे तो पहुंच सकता है और रह भी सकता है, लेकिन शुरुआत में तो कभी कभी तीनों गुण के अंदर है, कभी कभी आध्यात्मिक अवस्था में है, तो कभी कभी बीज में है, तो कभी अंतरंग शक्ति, कभी बाह्य रंग शक्ति के अंदर है और बीज में है। तो लेकिन हमको देखना है कि हम आगे जा सकता है भजन करते करते, कि हम उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है, लेकिन सबसे पहले अच्छी तरह से सारे भजन करते हुए अविधेय अवस्था पर करके उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है, तो समय लगता है। और जब उत्तम वैष्णव गुरु के सन्निध्य में है तो अच्छी तरह से भजन कर सकता है। तो इसलिए कहा जाता है गुरुपद आश्रय भक्ति के पहले अंग यह है, गुरु के पास जाना है, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु के पास जाना है, उनके आदेश अनुसार सदन भजन करना है, और ऐसे करके हम आगे जा सकता है। तो यहाँ पर अंत के समय बताता है कि क्या होता है। और जैसे पहले श्लोक को तत्पर्य में कृष्ण ये प्रभुपद कहता है कि जवान अवस्था में तो ज़्यादा तो विचार नहीं करता है कि आगे क्या होगा, इसलिए शेष करके जो भजन नहीं करता है अच्छी तरह से खाता है, भोजन लेता है 2-3 बार और बीज में भी लेता है कुछ, और स्त्री संभोग भी ज़्यादा करता है, और सोचता है ठीक है, कभी कभी भी बोलता है अगर भगवान के बारे में कुछ सुना है कि हाँ भगवान है, ठीक है वृद्धावस्था में भजन करेंगे, अभी तो युवावस्था में परिवार का देखभाल करना है और थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति भी करना चाहिए, क्या इसका क्या 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 दोष है, कोई हम इसमें तो है इस भौतिक जगत में, लेकिन अंत के समय जरूर भजन करेंगे, लेकिन नहीं होगा। और भक्त लोग भी कभी कभी तो ऐसा सोचता है और ज़्यादा तो हाँ भजन तो करता है, ठाकुर जी की सेवा करता है, और लेकिन ये भी नहीं सोचता है जब युवावस्था में कि वृद्धावस्था में पहुँचेंगे तो मुश्किल होगा भजन करना, और खूब प्रसाद पाता है 3 बार और महाप्रसाद पाता है, गृहस्थ भी गृहस्थ आश्रम है ठीक है, प्रसाद तो लेना है और पेट भर के भी ले सकता है, और लेकिन फिर भी इसका कोई सीमा होना चाहिए और कम से कम होना चाहिए, जो खाना जो होता है, पीना जो होता है और सोना जो होता है ये तो करना ही है, लेकिन कम से कम करना चाहिए। और जैसे स्त्री संभोग भी नियमित रूप से होता है, जब उनकी जब इच्छा उत्पन्न होते नहीं करना चाहिए शास्त्र के अनुसार, तो जब गृहस्थाश्रम में भी नियम है तो कि जब गर्भधारण संस्कार के लिए तो सोचता है तब स्त्री संभोग होता है अन्यथा नहीं, तो नियमित रूप से प्रसाद लेना है 1-2-3 बार ठीक है, लेकिन इसके बाद बीज में भी कुछ लेना है, तो कभी कभी जब वृद्धावस्था में है तो ज़रूरत होता है और कम प्रसाद लेना है, लेकिन कभी कभी बीज में थोड़ा सा कुछ लेना है, लेकिन कम से कम प्रसाद लेना है। ये भी शास्त्र के अनुसार, नीति शास्त्र के अनुसार, जैसे ये क्या चाणक्य मुनि उनके नीति शास्त्र के है उपदेश है, 3 चीज तो ज़्यादा भी कर सकते कोई हानि नहीं है और ज़्यादा ही करना चाहिए। एक है जाप, ऐसा नहीं सोचना चाहिए ठीक है 16 माला जाप करना बस हो गया, शुरुआत में ऐसा होता है जब करते वक्त लोग, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मन बहुत चंचल है और जब करता है और सोचता है अभी क्या करेंगे आज, क्या प्रसाद होगा, और तो मुश्किल हो जाता है 16 माला जब करना। जब नाम रुचि नहीं है, दूसरे के बारे में सोचता है ये वक्त मेरे को ये बोल दिया है तो ये तो गलत है, और ये वक्त ये किया है वो भी गलत है, तो ये व्याप्त चिंतन है। तो 16 माला हो गया, हाँ 16 माला हो गया, बस हो गया आज के लिए, लेकिन जब नाम रुचि है तो भगवान का चिंतन करता है जप के समय, और जप करते करते 16 माला हो गया और भी करता है, और इसके बाद दूसरे सेवे भी करता है, लेकिन जब थोड़ा सा भी समय यहाँ है जिसे सेवा करके प्रसाद पा के और समय है तो और जप करता है, तो इसके कोई सीमा नहीं है। प्रभुपद उन्होंने भी बोला कम से कम 16 माला जप करना है, सिर्फ उपदेश देते हैं दीक्षा के समय, एक उपदेश 16 माला जप करना है, लेकिन हम ऐसे बोलते थे कम से कम इसका मतलब क्या अर्थ है, 16 माला से ज्यादा भी कर सकते, करना ही चाहिए। जिसे एकादशी तिथि या जो शुभ तिथि और जब समय है, जैसे तो जब जड़ सेवन आय है और जो गृहस्थ जो हो पैसे कमाना भी है, और लेकिन शनिवार और रविवार छुट्टी है, उसी दिन अगर समय है तुरंत और जप भी कर सकता है। तो जप इसका कोई सीमा नहीं है कि 16 माला जप करने इसके ज़्यादा करना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, ये कम से कम है। इसके बाद शास्त्र अध्ययन रोज रोज करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़्यादा अच्छा रहता है। प्रभु ने भी बोला कम से कम एक घंटा रोज रोज पढ़ना है, एक घंटा रोज रोज पढ़ना है। अगर ज़्यादा कर सकता है जैसे ब्रह्मचारी तो के पास तो गृह और स्त्री का कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए उनके पास ज़्यादा समय है। तो ज़्यादा जप करना चाहिए ज़्यादा, और सेवा जरूर करना चाहिए, जैसे 6 घंटे 8 घंटा आजकल इतना भी नहीं करता है, 3-4 घंटे करता है। और दूसरे समय ज़्यादा जप करना चाहिए, ज़्यादा शास्त्र पढ़ना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कभी कभी ज़्यादा प्रजा पर बोल रहा है ब्रह्मचारी भी, तो ये सब छोड़ना है। और ज़्यादा जप करना है, ज़्यादा शास्त्र का अध्ययन करना है। तो और तीसरी चीज़ जो कभी ज़्यादा नहीं है, ये दान, ये तो विशेष करके गृहस्थ के लिए है, उनके ये एक कर्तव्य है कि उनको दान देना चाहिए अलग अलग समय। जिसे जन्मदिन, जिसे मान लीजिए किसी के गृहस्थों के, तो जन्मदिन जब होता है तो शास्त्र के अनुसार भी दान यज्ञ तप करना चाहिए। यज्ञानुष्ठान करते थे, या यज्ञ कलयुग में नाम कीर्तन है, संकीर्तन यज्ञ, तो ज़्यादा जप कर सकते उसी दिन, थोड़ा सा तपस्या, जिस आधे दिन उपवास भी रख सकता है। और दान देना या दूसरे को प्रसाद खिलाना, तो और जैसे ब्रज में जब रहता है, और ये विशेष करके गृहस्थ के लिए भी है लेकिन दूसरे के लिए भी, कि कोई महान पुरुष भी कहता है गाय की सेवा के बिना, गाय की सेवा के बिना कृष्ण के पास नहीं पहुंच सकता है। कृष्ण तो गोप भगवान है, आदि पुरुष है, सबके उद्गम है, लेकिन गोप के रूप में है, गोपाल चुरामनी। तो गाय बछड़े की सेवा करता है, वो तो कृष्ण के लिए जो भी कर रहा है तो खेल है, लेकिन फिर भी तो पालन पोषण करते हैं इसके लिए। उनके अलग अलग नाम तो है, कृष्णा सब आकर्षक है, लेकिन उसका नाम भी है गोपाल, गोविंद, गो गाय बछड़े के पालन पोषण करता है, देखभाल करता है। और इसलिए अगर उनकी लीला में प्रवेश करना है ब्रज में, गोलोक कह रहे थे, गोलोक में कृष्णा, गोलोक क्या क्या है, गो का लोक, दूसरा नाम भी है कृष्ण लोक, ये 4 भाग में विभाजित है। द्वारका ये सर्वोत्तम जगह, आध्यात्मिक जगत है, मैं कृष्ण लोक, तो कृष्ण लोक के 4 भाग है। एक है द्वारकापुरी, जहाँ पर द्वारकाधीश है, इसके बाद मथुरापुरी, इसके बाद ब्रज वृंदावन गोलोक, और श्वेतद्वीप नवद्वीप, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान है उनके नित्य सिद्ध परिकार सहित, वहाँ पर उनके साथ है और लीला में लीन है। तो गोलोक जाने के लिए हमको गौसेवा जरूर करना है। और जैसे ये भी कहा जाता है कि वैदिक भक्ति करते हुए ब्रज भाव में पहुँचना है, रघुनु के भक्ति में प्रवेश करना है, रगात्मिक जन के अनुगत्य में उनके भाव लेकर हमको भजन करना चाहिए, जप करना चाहिए। अंत में गोपियाँ क्या सोचती, गोप क्या सोचती है, क्या सेवा करता है, यशोदा माँ नंद बाबा क्या सेवा करता है, उनके क्या भाव है, इसका विचार करना चाहिए। तो गौ सेवा जब सड़क के रूप में है तो शास्त्र के अनुसार, तो वान आश्रम के अनुसार हमको चलना ही है, ये जरूरत है। ये भी फिर भी विनम्र भाव में रहते हुए समझ के कि हम तो शरीर नए हैं और वान आश्रम से परे भी है, गोपी भत्तो दास दास अनुदास नाम भी प्रण चंद नरप दीन विवास न शूद्रो, चैतन्य महाप्रभु ने कहते थे हम गृहस्थ वनप्रस्थ या सन्यासी या ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी नए है, हम कृष्ण के दास के दास के दास है, शरीर नए है, जीवेरे सुप कृष्ण ने नित्य दास, लेकिन फिर भी वान आश्रम के अनुसार हमको चलना ही है, ये जरूरत है सड़क के शरीर में। लेकिन इसके बाद जब तुरस आ गया है नित्य सेवक के कृष्ण के या महाप्रभु को स्मरण करके भजन करना है, उनके भाव लेकर ब्रिजवासियों के लेकर भजन करना है, विशेष करके जप करना है, भजन मतलब जप करना अच्छा तरह से ब्रज भाव में। तो ऐसे करते हुए हम आगे जा सकता है। तो वान आश्रम के अनुसार चलना है तो चार वर्ण है, चार आश्रम है। तो जब ब्रह्मचर्य आश्रम में है, जब युवक जवन अवस्था में है, युव अवस्था में है, तो ऐसा होता है कि ज़्यादा तो वृद्ध अवस्था में के बारे में नहीं सोचता है और ये भी मुश्किल भी हो जाता है। मैंने खुद भी देखा तो जैसे 10 साल से पहले देखते दूसरे वैष्णव को देखते अच्छा तरह से नहीं चलता है तो नहीं सोचता ऐसे भी ऐसे दिन भी आएगा जब मैं अच्छा तरह से नहीं चल सकता हूँ। लेकिन अभी मैं भी वृद्धावस्था में पहुँच गया और अभी जैसे पहले इधर उधर चले जाते थे और सेवा करते थे अभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी समझते हुए भी हम शरीर नहीं आप अभी तो आत्मा है, लेकिन फिर भी वृद्धावस्था में सबका पहुँचना ही है, वैष्णव भी हो लेकिन साथ ही साथ इससे परे भी है, लेकिन वृद्धावस्था में भी पहुंच गया है तो इसके अनुसार भी तो चलना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर भी उल्लेख है श्री प्रभुपाद उन्होंने, और ये सब तो जो भगवान की आराधना नहीं कर रहे हैं, जो शुरुआत में थोड़ा सा उनको मालूम है कि भगवान है लेकिन जड़ सेवा नहीं करता है, कर्मी जो है उनको बताना है कि है ना ये चार आश्रम है, चार वर्ण है। तो गृहस्थ आश्रम पर करके वन आश्रम में प्रवेश करना है। लेकिन हमेशा भगवान केंद्र में होना चाहिए हमेशा, और इंद्रिय तृप्ति छोड़ देना है या कम से कम जब गृहस्थ आश्रम में है तो कुछ इंद्रिय तृप्ति है वहाँ पर। और जैसे प्रभुपाद ने भी बोला था जैसे ठाकुर जी के महाप्रसाद ये सबके लिए है, लेकिन विशेष करके प्रभुपाद ने बोला ये गृहस्थ के लिए है। सन्यासी भी नम्र भाव में रहना चाहिए और अल्पाहार और हल्क आहार होना चाहिए और ब्रह्मचारी भी ये थोड़ा सा प्रसाद ले सकता है, मिठाई ले सकते, कोई बात नहीं है, क्योंकि लिए इंद्रिय तृप्ति नहीं है तो शिव ये महाप्रसाद तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब वृद्धावस्था में पहुंचता है तो थोड़ा सा ये भौतिक आवश्यकताएँ जो है कम कर देना चाहिए और भजन ज़्यादा करना चाहिए, और ये जो भौतिक कार्य जो ऐसे तरह से दूर से रहना चाहिए। इसलिए गृहस्थ आश्रम के बाद वनप्रस्थ आश्रम है। तो जब बच्चे बड़े हो जाता है, जब लड़के हैं उनका अगर बिजनेस है उनको देना है और धीरे धीरे ये कम कर देना और ज़्यादा भजन करना है। और दो प्रकार के वनप्रस्थ है, एक जो पत्नी के साथ फिर भी रहता है, लेकिन जदा दोनों भजन करता है, तीर्थ यात्रा के लिए चले जाता है, ऐसे करते हुए आगे जाता है। और दूसरे जो सब कुछ छोड़ता है, और जैसे शास्त्र के अनुसार भी जैसे पृथ्वी महाराज कहा जाता है कि वे राजा परिवार सब छोड़ दिया, और उल्लेख है कि अकेले वन में गया, इसके बाद पत्नियों के साथ भी थी, उल्लेख है भगवतम के श्लोक में। तो अकेले मतलब ये सब दूसरी चीज छोड़ दिया, राज्य और वहाँ पर के मंत्रियाँ सेवक जो है, राज्य के पास बहुत सारे सेवक हैं जो कि सेवक कर रहा है, रसोई में कपड़े धोता है, ये करते वो करता है, राज्य के पास बहुत सारे सेवक है, लेकिन सब छोड़ दिया तो अकेले गए, सिर्फ उनकी पत्नी उनके साथ गए वन में। और इसके बाद तो वहाँ पर तो सिर्फ जो वहाँ पर वन में मिलते थे सब्जियाँ और पकाते थे, और थोड़े से इधर उधर से अन्न मिलते थे या फल पाते थे, बिल्कुल सरल, कोई रसगुल्ला हलवा नहीं पाते थे, सरल विधि से रहते थे, गुफा में रहते थे या वृक्ष के नीचे, ऐसे करते हुए जो दूसरे जो अकेले कर जाते थे, जैसे भरत महाराज जो भी है। तो अलग अलग आश्रम इसके अनुसार हमको चलना है, लेकिन अंत के समय जरूर आएगा, तो इसके लिए तैयारी करना चाहिए। ये परीक्षा, अंतिम परीक्षा यह है, अपने जीवन में बहुत सारे परीक्षाएं हैं और सबको पार करना चाहिए, लेकिन अंतिम शिख परीक्षा यह है अंत के समय। तो अगर अच्छे तरह से इसके लिए तैयारी करता है तो परीक्षा का पास कर सकता, नहीं तो फेल हो जाएगा। जैसे है ना, तो शुरुआत में जैसे कोई बच्चे जो है विद्यालय में जाता है, पहले द्वितीय श्रेणी है, इसमें थोड़ा बहुत कुछ परीक्षा होगा, लेकिन इसके बाद सेकेंडरी स्कूल और मुश्किल है, इसके बाद बोर्ड एग्जाम्स है, 10th क्लास 12th क्लास बोर्ड एग्जाम, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये पार करके तो विश्वविद्यालय में जा सकता है, और इसके लिए डॉक्टर बनाने के लिए भी परीक्षा देने पड़ता है, ये और मुश्किल भी होता है। तो अपने जीवन में अलग अलग परीक्षा है, पास करना चाहिए हमको, लेकिन अंतिम परीक्षा अंत के समय है जब शरीर छोड़ता है, तो उसी समय भगवान का स्मरण करना चाहिए और उनके सुंदर गुण और लीला का स्मरण करना चाहिए। तो इसके लिए हमको अभी तो तैयारी करना चाहिए, और इसलिए अच्छा तरह से सारण भजन करना चाहिए, गुरु के सन्निधि में रहते हुए उनके आदेश पालन करके हमको सारण भजन करना चाहिए, जिससे हम इससे पहले भी अंत के समय के से पहले ये सब छोड़ देना चाहिए, ये इंद्रिय तृप्ति और भगवान के प्रति सब कुछ तो अर्पण करना चाहिए, और उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो ये हमको देखना चाहिए, और भौतिक आसक्ति बिल्कुल छोड़ना है, अन्यथा फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए अभी हमको देखना है जहाँ पर भी है हम कुछ अवस्था में कि हम कैसे और आगे जा सकता है, तो सबको इसके बारे में कभी कभी चिंतन करना चाहिए। जैसे उदयनारायण नाथ के लिए भी भक्ति विनोद ठाकुर, रंगनाथ दास के स्वामी कुछ कभी कभी इसके बारे में विचार करते थे हमको दिखाने के लिए, हम कहाँ पर हैं और कैसे आगे जा सकता है, जिससे हम उत्तम अवस्था पर पहुँच सकता है, जिससे अंत के समय भगवान का स्मरण करें और इसके बाद लीला में प्रवेश कर सकता है, गौलीला कृष्ण लीला में प्रवेश कर सकता है। तो आसान नहीं है, लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए अच्छा तरह से, इसके लिए अच्छा तरह से सरण भजन करना है, विशेष करके अच्छी तरह से जप करना है, ठाकुर जी की सेवा करना है, भगवत श्रवण, गौर लीला, कृष्ण लीला का श्रवण करना चाहिए, उनके अद्भुत रूप गुण लीला के बारे में हमको श्रवण करना चाहिए। तो अभी बहुत शुभ तो समय आने वाला है कार्तिक मास में, उसी समय विशेष करके तो कार्तिक व्रत का पालन करना चाहिए। और जैसे चतुर्मास अभी में है, चतुर्मास का व्रत है, इसका पालन करना चाहिए। विशेष करके उसी समय भी इंद्रिय तृप्ति तो रस छोड़ना है कम से कम 4 महीने के लिए। अगर ये भी मुश्किल है तो कम से कम कार्तिक मास में थोड़ा सा तपस्या करना चाहिए, वो कुछ छोड़ना चाहिए, कम कर देना इंद्रिय तृप्ति, कम ब्रह्मचर्य भी महाप्रसाद लेना है तो, और ज़्यादा जप करना है, अलग अलग मंत्र चरण करके भी। जैसे अष्टकम है, एक तो कम से कम है दमर और अष्टकम का रोज रोज चरण करना चाहिए, लेकिन दूसरे बहुत सारे अष्टकम है कृष्ण के लिए, महाप्रभु के लिए, श्रीमती राधारानी के लिए, अमरपूर्वता आचार्यों के ग्रंथ में उल्लेख है। जैसे राधिका का 3 अष्टकम है, महाप्रभु का रूप गोस्वामी पद खुद 2 चैतन्य अष्टकम उन्होंने उल्लेख किया है। तो ये उच्चारण करके भगवान का अर्पण करना चाहिए। ऐसे करते हुए तो रसा हमारी शक्ति जो है कृष्ण के भगवान के प्रति बढ़ जाती है और भौतिक शक्ति कम हो जाती है, ऐसे करके आगे जा सकता है। और तो हरे कृष्णा, यहाँ पर समाप्त करो। क्या दान किसको देना है? सबसे पहले भगवान को दान देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद गुरुजान को, शुद्ध वैष्णव को दान देना चाहिए। इसके बाद गौ सेवा भी करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान को कुछ अर्पण करना चाहिए, जैसे कार्तिक मास में रोज रोज एक तुलसी माला या फूल माला अर्पण कर सकता है, और जैसा भी कभी कभी करती है कुछ सेवा वैष्णव के लिए, वैष्णव सेवा, गुरु के लिए कुछ अर्पण करना चाहिए, कभी कभी दान देना चाहिए, वैष्णव सेवा करना चाहिए। वस्त्र वस्त्र वैष्णव परम ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो बाहर के ब्राह्मण भी है, ठीक है, ये भी सजान है, पूजनीय है, अदनीय है, लेकिन वास्तव में वैष्णव को देना है जो भगवान के शरणागत भक्ता है, और विशेष करके जो आ गया है, लेकिन दूसरे को भी दे सकता, विनम्र भाव में होने चाहिए, और इस भाव से कि सब वैष्णव बड़े भक्ता है, हम तुच्छा है, तो ठीक है, तो सब वैष्णव को दे सकती है दान, ठीक है। हरे कृष्ण। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवतम की, श्री प्रभुपाद की।